ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। विक्रम संवत 2084 में होने वाले चुनाव में एमाले अन्य दलों के साथ गठबंधन नहीं करेगी। एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। कहा, मौजूदा सरकार बनने के बाद से अर्थतंत्र में दिखने लगे हैं सकारात्मक संकेत। विभिन्न 34 अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थाओं को सार्वजनिक छुट्टियों में भी बहिरंग सेवा संचालित करने का स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया परिपत्र। काठमांडू तराई मधेश एक्सप्रेसवे के निर्माण में तेजी लाने का नेपाली सेना को रक्षा मंत्री मानवीर राय ने किया निर्देश। और यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में मौजूद शहर पोल्तावा पर रूसी मिसाइल हमले में 41 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि एमाले चुनाव में अन्य दलों के साथ गठबंधन नहीं करेगी। आज से पार्टी मुख्यालय चासल में शुरू हुई एमाले पॉलिट ब्यूरो की तीसरी बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ओली ने कहा कि 2084 के चुनाव में एमाले किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन चुनाव के नतीजे के आधार पर अन्य दलों के साथ तालमेल किया जा सकता है। मौके पर उन्होंने मिशन 84 की तैयारी करने का पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को निर्देश भी किया। ये जानकारी एमाले के उप महासचिव प्रदीप ग्यावाली ने दी। बैठक में प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि मौजूदा सरकार बनने के बाद अर्थतंत्र में सकारात्मक संकेत दिखने लगे हैं। पूंजी बाजार बढ़ा है और इससे जनता में सकारात्मक संदेश गया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि संविधान के मौलिक अधिकारों और मानवाधिकारों से संबंधित राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को समाहित करके समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली की राष्ट्रीय आकांक्षा पूरी की जाएगी। आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा लैंगिक समावेशन पर एशियन प्रशांत क्षेत्र में मानवाधिकार संगठनों के 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि नेपाल के संविधान ने मौलिक अधिकारों के कई सवालों को स्थापित किया है। उनका कहना था कि नेपाल में 20% नागरिक अभी भी पूर्ण गरीबी रेखा के नीचे हैं और गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को पूरा किए बिना सभी नागरिकों को सशक्त बनाना संभव नहीं होगा। उन्होंने बताया कि सरकार और मानवाधिकार आयोग सामाजिक न्याय और समानता के साझा लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि देश को समृद्ध बनाए बिना लोगों को खुश नहीं किया जा सकता है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक ने सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संबंध में संसदीय जांच विशेष समिति कार्यावधि बढ़ाया है। बैठक में जांच समिति के अध्यक्ष सूर्य बहादुर थापा द्वारा प्रस्तुत सहकारी जांच विशेष समिति की कार्यावधि 15 दिन बढ़ाने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। बता दें कि सहकारी रकम के दुरुपयोग की जांच के लिए 2081 जेठ 15 गति को संसद द्वारा गठित 7 सदस्यीय विशेष जांच समिति का कार्यकाल भाद्र 22 गति को समाप्त होने वाला था। बैठक में राष्ट्रीय सभा में नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक संबंधी समिति का प्रतिवेदन 2081 और सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक संबंधी शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति का प्रतिवेदन 2081 पेश किया गया। इसी तरह बैठक में धितोपत्र संबंधी प्रथम संशोधन विधेयक 2081, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व प्रथम संशोधन विधेयक 2081 के प्रस्ताव को पारित किया गया। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक इसी भाद्र 24 गति सोमवार दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री शरद सिंह भंडारी ने कहा कि वैदेशिक रोजगारी में समस्या में रहे महिलाओं और पुरुषों का उद्धार करने के लिए वे कूटनीतिक पहल कर रहे हैं। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में सांसद प्रेम सोवाल के प्रश्न के उत्तर में श्रम मंत्री भंडारी ने कहा कि वैदेशिक रोजगारी में जाने से पहले उन्हें अभिमुखीकरण तालीम दी जाती है और महिला कामगारों के लिए जॉर्डन के साथ श्रम समझौता हुआ है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में सांसदों ने चिकित्सा शिक्षा आयोग द्वारा ली गई एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा के नतीजे में लापरवाही का जिक्र करते हुए दोषी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। सांसदों ने प्राकृतिक आपदा लगाए अन्य समसामयिक समस्याओं को रखते हुए उनके समाधान करने को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षण कराया। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। संसदीय सुनवाई समिति ने कतर के लिए प्रस्तावित राजदूत रमेश चंद्र पौडेल के साथ संसदीय सुनवाई की है। सिंहदरबार में आज आयोजित समिति की बैठक में प्रस्तावित राजदूत पौडेल ने अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की और कहा कि वो कतर में नेपाली श्रमिकों के हितों की रक्षा और प्रचार प्रसार पर जोर देंगे। उन्होंने राष्ट्रीय हितों पर ध्यान देकर और सरकार की विदेश नीति अधिकार के दायरे में द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों को आगे बढ़ाने, मजबूत करने और समय पर विकसित करने के लिए नेपाल कतर राजनयिक संबंधों को विस्तारित करने में भूमिका निभाने की बात कही। बता दें कि रविवार को समिति ने चीन, डेनमार्क, जर्मनी और भारत के लिए प्रस्तावित राजदूतों की संसदीय सुनवाई की थी और सोमवार को इजराइल, मलेशिया, पाकिस्तान और पोर्चुगल के लिए प्रस्तावित राजदूतों की संसदीय सुनवाई की थी। बीते श्रावण 14 गते हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने विभिन्न देशों के लिए 17 राजदूतों की सिफारिश की थी। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने कुछ बड़े सरकारी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं को सार्वजनिक छुट्टियों पर भी ओपीडी सेवाएं संचालित करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने 34 अस्पतालों और प्रयोगशालाओं और अन्य स्वास्थ्य निकायों को सार्वजनिक छुट्टियों पर भी ओपीडी सेवाएं संचालित करने के लिए एक परिपत्र जारी किया है। ये जानकारी मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ प्रकाश बुढ़ाथोकी ने दी। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय को एक पत्र भेजा था जिसमें अस्पताल को सार्वजनिक छुट्टियों पर ओपीडी सेवाओं सहित सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। सार्वजनिक छुट्टी के दिनों में अधिकांश निकायों द्वारा स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध नहीं कराए जाने की सार्वजनिक शिकायतों के आधार पर सरकार ने सार्वजनिक छुट्टियों के दिन भी ओपीडी सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जापानी इंसेफ्लेटाइटिस संक्रमण से कैलाली में 2 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य कार्यालय कैलाली की कार्यवाहक प्रमुख गौरी जोशी ने जानकारी दी है कि घोड़ा घोड़ी नगर पालिका के 2 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई है। गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा है कि संक्रमणकालीन न्याय को जल्द ही पूरा किया जाएगा। आज कंचनपुर के बेलौरी में मीडियाकर्मियों से बातचीत में मंत्री लेखक ने कहा कि सभी पक्षों की सहमति से संक्रमणकालीन न्याय को अंतिम रूप देने के लिए कानून बनाया गया है और जल्द ही आयोग का गठन किया जाएगा। मंत्री लेखक ने कहा कि संविधान और कानूनों से परे हिंसक और अवांछित गतिविधियों को राज्य बर्दाश्त नहीं कर सकता है। रक्षा मंत्री मानवीर राय ने रणनीतिक महत्व का काठमांडू तराई मधेस द्रुत मार्ग फास्ट ट्रैक तय समय पर संपन्न होने के हिसाब से निर्माण को तीव्रता देने के लिए नेपाली सेना को निर्देश किया है। अर्थ मंत्रालय ने शर्तों के साथ डेयरी विकास संस्थान डीडीसी में 60 करोड़ रुपए ऋण निवेश करने के हिसाब से मंत्रिपरिषद में प्रस्ताव पेश करने की कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय को मंजूरी दे दी है। डेयरी विकास संस्थान फिलहाल इस राशि का उपयोग किसानों को दूध की शेष राशि का भुगतान करने के लिए कर सकता है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने बताया है कि रूसी मिसाइल हमले में 41 लोगों की जान चली गई है और 180 लोग घायल हुए हैं। जेलेंस्की ने बताया कि यह हमला देश के पूर्वी हिस्से में मौजूद शहर पोल्तावा पर किया गया है। जेलेंस्की ने कहा कि शैक्षिक संस्थानों और अस्पतालों पर हमला हुआ है। 2 बैलिस्टिक मिसाइल से रूस ने अटैक किया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विक्रम संवत 2084 में होने वाले चुनाव में एमाले अन्य दलों के साथ गठबंधन नहीं करेगी। एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। कहा, मौजूदा सरकार बनने के बाद से अर्थतंत्र में दिखने लगे हैं सकारात्मक संकेत। विभिन्न 34 अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थाओं को सार्वजनिक छुट्टियों पर भी बहिरंग सेवा संचालित करने का स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया परिपत्र। काठमांडू तराई मधेस एक्सप्रेस वे के निर्माण में तेजी लाने का नेपाली सेना को रक्षा मंत्री मानवीर राय ने किया निर्देश। और यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में मौजूद शहर पोल्तावा पर रूसी मिसाइल हमले में 41 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।